created with free version for non-commercial use.
Pradhaniti namine pranataklesha nashaya girirajaya namo namaha. Namo nalina netraya vinovadya vinodine radhadhar sudapana shaline vanamaline. Mahabhava swarupasvam krishna priya variyasi prima vakti pradedevi shri radhika tvam namostute. To swagat hai aap sabka giriraj govardhan ki parikrama mein. आज हमारा तीसरा दिन है परिक्रमा का. तो गोवर्धन के परिक्रमा के तीसरे दिवस पे हम गोवर्धन के पश्चिम परिक्रमा मार्ग पे जो भी भगवत लीला स्थलियां है उनके बारे में कथा करेंगे. तो कल हमने देखा पूंछड़ी की लोटा बाबा पे, हमने पूंछड़ी के लोटा बाबा का दर्शन किया. फिर वहां से जब आगे आते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है और वो है राघव पंडित जी की गुफा. चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर थे श्री राघव पंडित. ये यहीं पे निर्जन स्थान पे रहकर भगवत भजन किया करते थे और श्रील जीव गोस्वामी ने
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को इन्हीं के साथ ब्रजमंडल की परिक्रमा कराई थी. ये परम तत्वज्ञ थे और रसिक वैष्णव थे, इसी के कारण यहां पे वे निर्जन भजन किया करते थे. इसी गुफा के पास ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है. आज भी ये गुफा वहां पे स्थित है और वहां पे बहुत सुंदर एक मंदिर भी है श्रीनाथ जी का, जिनके बहुत सुंदर दर्शन है. यहां से जब हम एक मील थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाते हैं तो भगवान की और एक लीला स्थली है यहां पे. यहां पे कई बड़े बड़े पलाश के वृक्ष हैं और इस पलाश के पत्ते भी काफी बड़े. तो इन्हीं बड़े पत्तों से दोना बना के भगवान वो दोने भर भर के छास पिया करते थे यहीं. और यहां पे एक रास स्थली भी है. फिर हम यहां से थोड़ा सा आगे जब चले जाते हैं राघव पंडित की गुफा से होकर इस कदंब खंडी से जिसे श्याम ढाक भी कहा जाता है, यहां से जब हम आगे चले जाते हैं तो परिक्रमा के दाहिनी मार्ग में एक निर्मल मीठे जल से भरा हुआ छोटा सा कुंड है, उसे सुरभि कुंड कहा जाता है. जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके माता सुरभि ये स्थान पे आई तो उन्होंने यहां पे
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
रहकर भगवान श्री राधा कृष्ण के सुंदर लीलाओं का दर्शन करने की इच्छा से यहीं पे निवास किया. और आगे जाके वज्रनाभ जी ने उन्हीं की स्मृति में यहां पे कुंड निर्माण किया. तो कहा जाता है कि ये कुंड में जो भी व्यक्ति कोई स्नान कर लेता है या आचमन कर लेता है तो अपने सारे पापों से, अपराधों से एवं भक्ति में मार्ग में जो हमारे हृदय में अनर्थ निर्माण होते हैं, क्योंकि हम भक्ति करना शुरू कर देते तो साथ ही साथ कुछ अनर्थ भी हो जाते हैं उसके कारण, क्योंकि हृदय में अनर्थ है. भक्ति करने के कारण अनर्थ नहीं होते, बल्कि हमारे मन में जो अनर्थ रहते हैं तो भक्ति करने के कारण वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो उन अनर्थों से मुक्ति पाने के लिए
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज,
जो बहुत ही गंभीर सदाचारी साधना में लगे हुए वैष्णव है वे यहां पे आके स्नान कर लेते हैं। इसी सुरभि कुंड से आगे जब हम थोड़े से आगे चले जाते हैं तो ऐरावत कुंड है। भगवान श्री कृष्ण का यहीं पे ऐरावत ने मंदाकिनी जल से अभिषेक किया था इंद्र के कहने पर। तो यहां पे आप गोवर्धन की शिलाओं पे ऐरावत के पदचिन्ह भी देख सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। फिर ऐरावत कुंड से होकर जब हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो वहां पे अभी 2014 में ही एक जो कुंड है वहां जिसका नाम है रुद्र कुंड, गिरिराज की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से और कुछ वैष्णवों की कृपा से इस दास को भी उस कुंड के जीर्णोद्धार में थोड़ा बहुत सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह रुद्र कुंड बहुत ही सुंदर कुंड बना हुआ है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी, गोवर्धन को अपने हाथों पे उठाया था, उस समय शिवजी स्वयं आए थे देखने के लिए और यहीं पे आके बैठ के उन्होंने भगवान की सुंदर लीला का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद इतने भाव विभोर हो गए कि वो रोना शुरू कर दिया और रोते रोते उनके आंखों से ये पूरा कुंड भरा गया। इसलिए इसको रुद्र कुंड भी कहा जाता है और रुदन कुंड भी कहा जाता है।
और
इसी के पास ही भगवान श्री कृष्ण का कंदुक यानी गेंद खेलने का स्थान है। यहां पे श्रीजी का भी एक बैठक है, फिर अंजान वृक्ष है और पूजनीय शिला है। फिर यहां से थोड़ा सा नहीं, इसके पहले ही एक्चुअली रुद्र कुंड के पहले ही एक हरजी कुंड करके है, अभी उसका भी उत्खनन हुआ है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा ये कुंड है, बहुत ही सुंदर है। हरजी कुंड, फिर रुद्र कुंड और फिर हम आते हैं जतिपुरा गांव में। ये माधवेंद्रपुरी जो यति थे उनके भजन स्थली है, इसलिए उसको यतिपुरा, और बंगाली में य का उच्चारण ज से ज जैसा करते
हैं।
ब्रज के कई सारे गांवों के नाम बंगाली उच्चारण से, जैसे यावट को जावट कहा जाता है, तो ज का उच्चारण य का उच्चारण ज किया जाता है, क्योंकि ये सारे स्थान गौड़ीय वैष्णवों ने ही जीर्णोद्वार किए थे या प्रकट किए थे, उसी कारण ये नाम इस प्रकार से है। तो जतिपुरा में जब श्रीनाथ जी प्रकट होने के पश्चात श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भजन किया करते थे, तो एक समय श्रीनाथ जी ने उनको दृष्टांत दिया और कहा कि मेरा शरीर अभी भी गर्मी के कारण जल रहा है, तो कृपया आप मेरे लिए मलेश चंदन लेके आइए जगन्नाथपुरी जाके। तो वे जगन्नाथपुरी गए, वहां से चंदन लेके वापस आ रहे, तो वापस आते समय रेमुणा में रुके, तो वहां पे श्रीनाथ जी ने दर्शन देके कहा कि आप वहां तक आने की आवश्यकता नहीं, यही गोपीनाथ जी को आप चंदन लगाइए। तो पूरा एक महीना वहां पे भगवान को चंदन लगाया गया और वहीं पे गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुरा के रखी थी, इसलिए गोपीनाथ जी का नाम खीरचोर गोपीनाथ हुआ। उसकी सुंदर कथा आपको चैतन्य चरितामृत में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो आगे कहीं कहा नहीं गया कि वे वापस चंदन लेके यहां पे आए, क्योंकि रेमुणा में ही माधवेंद्रपुरी जी की समाधि है। तो आगे कभी उल्लेख नहीं आता कि वे वापस यहां ब्रज में चले आए। फिर जतिपुरा से हम थोड़ा जब आगे निकल जाते हैं तो वहां पे एक स्थान है अन्नकूट स्थल,
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
जतिपुरा में गोवर्धन से लगे हुए स्थानों को अन्नकूट स्थली कहते हैं, क्योंकि यहां पे माधवेंद्र पुरीपाद ने लगभग एक मास तक भगवान को अन्नकूट अर्पण किया था, यहां पे अन्नकूट का महोत्सव किया था। आज भी कई अवसरों पर यहां पे अन्नकूट भोग का महोत्सव रहता है और तथा प्रतिदिन हजारों हजारों यात्री यहां पे दर्शन के लिए आते हैं। फिर आज इसके आगे एक स्थान है, लीला स्थली है, जिसका नाम है बिल्छु कुंड और इसको विलास वदन भी कहा जाता है। यह श्री श्री राधा कृष्ण की विलास स्थली है। फिर बिल्छु कुंड से आगे दान घाटी को जब पार कर हम गोवर्धन गांव में प्रवेश करते हैं, वहां से जाने के लिए हमें बाजार से होके आगे जब चले जाते हैं तो फिर पुनः हम मानसी गंगा के पश्चिम तट पे आते हैं, जहां से चक्रेश्वर महादेव की परिक्रमा करके दूसरा एक गांव आता है जिसका नाम है सखीथरा। ये सखी वर्ण के अंतर्गत है। तो इसके एक बहुत सुंदर कथा आती है कि गोवर्धन दो भागों में बटा हुआ है, एक है चंद्रावली जी का भाग और एक है श्री राधा रानी जी का भाग। तो सखीथरा ये स्थान जो है ये चंद्रावली के अंतर्गत आता है। तो एक समय की घटना है, प्रसंग ऐसा है कि रघुनाथ गोस्वामी जी राधा मुंड के तट पे बैठ के अपना भजन कर रहे थे और वे इतने वैरागी थे कि अन्न ग्रहण नहीं करते non-commercial use, बल्कि केवल एक दोने में पलाश के वृक्षों के पत्तल के दोनों में छोटा सा छास कोई ब्रजवासी लाके देता था, उतना ही वो छोटे से दोने में छास पी के अपने भजन में लगे रहते। तो एक दिन वह ब्रजवासी उनके लिए बहुत बड़े दोने में छास लेके आ गया पीने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा था बाबा जी है और केवल दिन में एक बार ही छोटा सा तो छास पी लेते, तो थोड़ा बड़े पत्तल में दे देते, तो वो लेके आ गया। तो दास गोस्वामी जी ने जब देखा उसको कि बोले अरे इतने बड़े दोने बनाने के लिए तुम्हें पत्तल कहां से मिले, कहां से लेके आ गए? तो उसने कहा कि मैं सखीथरा से लेके आया। गुना दास गोस्वामी जी भी बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, हे बोले हमें नहीं चाहिए, और डाल दिया उसको नीचे और बोले जाओ भागो यहां से। तो ब्रजवासी को तो समझ में नहीं आया,
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज,
क्योंकि श्री दास गोस्वामी जी श्री राधिका के प्रिय स्वपक्ष की सेविका है, तो साधारण व्यक्ति के लिए उनका गंभीर भाव समझना कठिन। राधा रानी के दल के होने के कारण चंद्रावली के दल के कोई चीज उनको पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमान्य कर दिया। फिर यहां से और आगे हम चले जाते हैं तो उद्धव कुंड की ओर जब हम चलते रहते हैं तो उसी समय एक गांव आता है, उसका नाम है सौकराई। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने बार बार गोपियों के सामने शपथ ली थी और कहा था कि श्री राधिका के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं पूरी सौगंध लेके कहता हूं।
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
श्रीमती जी के पक्ष के जो गोपियां थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यहां से शपथ दिलाई थी और इसीलिए इसका नाम है सौकराई। और यह स्थान जो है गोवर्धन ग्राम से पश्चिम की ओर 2 मील की अंतर पे आता है। फिर इसके आगे और एक गांव है जिसका नाम है शकरवा, क्योंकि इसी गांव में इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को सुरभि गाय का दान किया था और वर्तमान में इस जगह का नाम है शकरवा। और यहां पे शुक्र कुंड और ग्वाल कुंड है और ये लगभग 1.5 माइल की दूरी पर है सौकराई से। फिर इसके आगे जब हम चलते हैं,
Created with free version for non-commercial use.
यहां तक पहुंचते पहुंचते कई बार, क्योंकि अभी प्रकट रूप में यहां पे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल काफी खुली जमीन ही दिखाई देती है, खेती खेती है केवल, तो उसके कारण चलते समय कई बार बहुत थकान आ जाती है। और जब इतनी थकान के पश्चात हम पहुंचते हैं तो कुसुम सरोवर के ठीक पीछे पश्चिम भाग में परिक्रमा मार्ग पे दाहिनी ओर एक सुंदर कुंड है, उसे कहा जाता है उद्धव कुंड। स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य दिया है उसके अनुसार सबसे पहली बार भागवत कथा का गान इसी स्थल पे हुआ था और यहां पे भागवत कथा की थी उद्धव जी।
Created with free version for non-commercial use.
16,160 महिषियां हैं, उनको श्रीमद् भागवत का रहस्य उद्घाटन उद्धव जी ने इसी स्थान पे किया था। एक समय की बात है, उद्धव जी आज भी इसी स्थान में तृण और लताओं पुष्पों के रूप में निवास कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके चले गए तो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी द्वारका में वे बड़ी दुखी हो गई थी, लेकिन उसमें से कालिंदी जो थी वे दुखी नहीं दिख रही थी। तो सारी रानियों को कि ये कालिंदी यमुना जो है ये इतना प्रसन्न कैसे रहती है, इसको भगवत विरह कैसे नहीं हो रहा है जैसे हमें हो रहा है, तो उन्होंने पूछा उसके लिए। तो उस समय यमुना जी ने कहा कि मेरे यहां तो नित्य भगवान की लीला चलती रहती है, ये मनुष्य शरीर में मैं उनकी पत्नी हूं लेकिन नदी के रूप में मैं वृंदावन में हर समय बहती रहती है, ब्रज में बहती रहती हूं और ब्रज छोड़ के भगवान तो कहीं नहीं जाते, तो मुझे तो उनका कभी विरह नहीं होता है। तो सबको अचरज लगा, सब कहने लगे कि चले हमें भी ब्रज की लीलाओं का आस्वादन करवा, हमें भी ब्रज लेके चलो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपोत है वज्रनाभ जी उनको लेकर सारी पटरानियां व्रज में चली आई और आके इसी स्थान पे उन्होंने, क्योंकि उस समय यमुना जी का प्रवाह
Created with free version आज के for non-commercial use.
यहीं से होता था, बहुत सट के बहती थी गोवर्धन पर्वत से। अभी समय के पश्चात उसने अपना प्रवाह बदल लिया और कई मीलों वो दूर चली गई, तो पहले तो यहीं से बहती थी। इसलिए आज भी अगर आप वहां पे कहीं भी खोदोगे, हम जब रुद्रकंठ का काम कर रहे थे उसके जीर्णोद्वार का 50 फुट हमने खोदा तो 50 फुट तक नीचे केवल यमुना की रेती लग रही थी। यानी इससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है कि यमुना गोवर्धन से सट के बहती थी उस समय। तो सारे लोग आ गए और वहीं यमुना जी के तट पे गोवर्धन जी के तलहटी पे महासंकीर्तन शुरू हुआ और देखते ही देखते उस महासंकीर्तन में भगवान श्री कृष्ण के सारे परिकर
क्रमशः
अर्जुन स्वयं मृदंग वादन कर रहे थे, और नृत्य भी कर रहे हैं साथ साथ। इस प्रकार द्वारका के सभी परिकर उस संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे और हठात महाभगवत उद्धव भी वहां के तृण गुल्म से आविर्भूत होकर नृत्य में विभोर हो गया। फिर भला कृष्ण ही कैसे रह सकते हैं, वे भी आ गए श्रीमती राधिका आदि सखियों के साथ, वे भी उस महासंकीर्तन में उस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हुए। थोड़ी देर के बाद वे तो अंतर्धान हो गए। फिर उद्धव जी ने द्वारका की महिषों को यहीं पर सांत्वना दी और भागवत कथा की। यहीं पे थोड़ा आगे जब जाते तो सुंदर गौशाला है,
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन-कमर्शियल यूज।
ऐसे ही चलते रहते हैं तो आपको वहां पे एक सुंदर गौड़ीय मठ मिलेगा अपनी बाई ओर, और एक कैनल है उसको जब हम पार कर लेते हैं तो दाहिनी ओर और एक सुंदर गौरांग महाप्रभु का उड़िया पद्धति का एक मंदिर बना हुआ है। महाप्रभु का विशाल का विग्रह है और बहुत ही सुंदर है गौर वर्ण का। वहां पे दर्शन करके आप जैसे ही राधा कुंड की ओर मुड़ते हैं तो अंदर जाने के पश्चात राधा कुंड की परिक्रमा मार्ग पे आएंगे तो उल्टे हाथ में भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज का समाधि है। मणिपुर के राजा ने जो मंदिर बनाया था वो मंदिर महाराज को उन्होंने समर्पित किया था, तो आज भी वहां पे
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन-कमर्शियल यूज
वहां ठाकुर जी के सेवा करते हैं। फिर वहां से हम जब आगे जाते हैं तो और उल्टे हाथ में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन कुटीर है जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर है कि अपना भजन किया करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते करते फिर राधा कुंड आते जहां से हमने परिक्रमा शुरू किया। तो राधा कुंड की परिक्रमा करके फिर वापस हम पहुंचते हैं वृंदावन मार्ग पर। वहीं से प्रणाम करके अपनी इस पूरे परिक्रमा का विश्राम कर लेते हैं। तो यह है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा। गिरिराज यह साक्षात भगवान का हृदय है जहां पे नित्य रूप से भगवान श्रीमती जी
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
सुंदर लीलाएं करते हैं। कहते हैं कि राधा कुंड में या राधा कुंड के जल में जानू तक यानी घुटनों तक या कटी तक या छाती तक पानी में खड़े रहकर जो भी व्यक्ति राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान कर लेता है 108 बार, विशेष करके दशमी एकादशी द्वादशी के दिन, तो कहते हैं कि साक्षात उस व्यक्ति को श्री जी के और नंदनंदन जी के दर्शन होते हैं। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना स्वयं शिव जी ने की है। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
शशी अमाम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों का शोक हरण करने वाली और सारे मुनियों के द्वारा जो वंदनीय है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासी, जिनका मुखमंडल नित्य रूप से प्रसन्न रहता है, जिनकी आंखें कमल दल के समान है और इस धरा धरती पर जो अपनी लीलाएं करने आई है, ऐसी श्रीमती राधा रानी हम पे कब कृपा कटाक्ष करे, ऐसा उस स्तोत्र का
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
भगवान की लीलाओं के और विशेष करके श्रीमती जी किस प्रकार से भगवान के ऊपर भी अपना अधिकार जमाती है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया हुआ। तो आइए इस गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं हम कि इनके कृपा के बिना भगवत चरण प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। और ये वे भगवान का ऐसा रूप है जो हमारे सारे पापों से हमें मुक्त करकर भगवान के श्री चरणों में हमें समर्पित कर देता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरि गोवर्धन की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो कल फिर हम अपनी गोवर्धन से होकर आगे दीर्घपुर तक जाएंगे जिसको आज डीग कहा जाता है। तो मार्ग में आने वाले अनेक जो सुंदर स्थलिया है वहां के भगवान की लीलाओं की चर्चा हम कल करेंगे। बोल श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय।
Created with free version for non-commercial use.